कौन कौन से स्वार्थ कर्म है, कौन कौन से परमार्थ कर्म है, ये जानना चाहते हैं।
वैसे समझ में आता ही है अपने भाषा में, लेकिन आपके हिसाब से और डिटेल होगी। ये तो सिंपल सी है, स्वार्थ परमार्थ, स्वार्थ अपने लिए, परमार्थ ईश्वर के लिए, लेकिन बात समझाई बात अलग है।
स्वार्थ कर्म और परमार्थ कर्म। स्वार्थ कर्म तो हम सब जानते ही हैं कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जितने भी कर्म किए जाते हैं सारे सारे स्वार्थ कर्म हैं। और ये स्वार्थ कर्म जीव के अहंकार को और गहरा करते हैं, अर्थात मैं करता हूं ये भाव जो आपके अंदर मौजूद है, ये इस भाव को और गहरा करते हैं। और जो परमार्थ कर्म है वो इस मैं भाव को खत्म करने के लिए, क्योंकि जीव का बंधन क्या है, जीव का बंधन यही है कि जीव अपने आप को ईश्वर से अलग करके एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में देखता है। मैं जीव हूं या जो कुछ भी अपने आप को मैं समझता हूं, मैं अलग हूं और हमेशा बना रहूंगा। देह की मौत भी हो जाएगी तो मेरा पुनर्जन्म हो जाएगा, और यदि ये स्वर्ग की सोचता भी है या मोक्ष की भी सोचता है, तब भी इसके दिमाग में एक ही कल्पना रहती है कि ईश्वर के पास मैं हमेशा बना रहूंगा, उसके पास बैठा रहूंगा या उसके पास सुख भोगता रहूंगा, मुझे कोई दुख नहीं मिलेगा, ऐसी कल्पना ये मोक्ष के बारे में ये बना लेता है। जबकि जो कुछ भी हम वाणी पढ़ते हैं, जो कुछ भी शास्त्र पढ़ते हैं या उनका श्रवण करते हैं, इसमें अद्वैत की बात आती है। आप महामंत्र का भी जाप करते हो, उसमें भी आता है ओम ब्रह्म सत्यम। जिस ब्रह्म को ओम करके हम उच्चारण करते हैं वही सत्य है, सत्य का मतलब है वही एग्जिस्ट करता है और उसके अलावा दूसरी कोई चीज संसार में प्रेजेंट नहीं है। निरंकार अजन्मा, वो अजन्मा है। अजन्मा है तो इसका मतलब उसकी मौत भी नहीं होती, मौत नहीं होती इसका मतलब उसके अंदर परिवर्तन भी नहीं है। तो जब कोई दूसरी वस्तु संसार में है ही नहीं तो वहां परिवर्तन क्या होगा। अद्वैत पुरखा, वो अद्वैत पुरुष है। पुरुष कहते हैं जो सारी सृष्टि में शयन कर रहा है, जो साइलेंट है। वो कैसी साइलेंस है? अद्वैत है। उसके अलावा दूसरी वस्तु जब नहीं होती है तो उसको अद्वैत कहते हैं। तो इस सारी सृष्टि में उस ब्रह्म के अलावा है ही कुछ नहीं, तो मैं कहां से आ गया बीच में? यदि मैं भी हूं तो अद्वैत कैसे रहा? फिर वो विचार करके देखो, यदि मैं भी मौजूद हूं, ईश्वर भी मौजूद है, तो ईश्वर टूट नहीं गया फिर दो चीजों में? तो हम जो सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, उसके बारे में सोचते ही नहीं। अद्वैत पुरखा, अद्वैत पुरख है इसलिए वो सर्वव्यापक है। यदि अद्वैत है तभी तो सर्वव्यापक होगा वो। इसलिए वो कल्याण मुहूर्त है वो, क्योंकि उसको जो जीव प्राप्त कर लेगा तो वो खुद भी अद्वैत हो जाएगा, रात भी कर लेगा, आप खुद बना भी रहेगा, ऐसा हो जाएगा कब क्या भी? तो वो जीव भी सर्वव्यापक हो जाएगा, इसी का नाम मोक्ष है। इसका मतलब जीव जो अपने आप को अलग करके देख रहा है सारी सृष्टि में, अपना अस्तित्व अलग समझ रहा है, और मोक्ष का मतलब ये वो ये समझ रहा है कि ये जितने लोग हैं ये सब बंधन में रहेंगे, मैं मुक्त हो जाऊंगा। यही तो कल्पना बनाते हैं हम लोग। हम सबकी इसी प्रकार की कल्पनाएं रहती हैं। शास्त्र जो कह रहा है उस पर हम, क्योंकि मनन करने की आदत नहीं हमारी, ध्यान से पढ़ने की आदत भी नहीं, जो मन में हमने इमेजेस बना रखे हैं, संकल्प बना रखे हैं, धारणा बना रखे हैं, उस अर्थ को हम शास्त्र के अर्थ का पर आरोपण कर देते हैं उसका। शास्त्र जो अर्थ बता रहा है उसको नहीं समझते, हम अपने धारणाओं को शास्त्र पर आरोपण कर देते हैं उसका, उस पर इम्पोज कर देते हैं उसका। तो इसीलिए शास्त्र के अर्थ जो वास्तव में वो हम कभी नहीं समझ पाते, मन चाहे अर्थ बनाते रहते हैं। इसी कारण हमारा अहंकार सदैव बना रहता है। हम कभी ये सोचते नहीं, ये अहंकार ही तो मेरे लिए मुसीबत है। इस अहंकार को खत्म करने के लिए ही ईश्वर भक्ति है। इसलिए गुरु को भी हम एक इंडिविजुअल समझते हैं, एक व्यक्ति है ये। जबकि महर्षि रमण से पूछो तो वो कहते हैं, जब कोई कहता है उनसे संसार में बड़े दुख हैं, इस संसार का भला कैसे होगा, तो महर्षि रमण कहते हैं पहले अपने आप को जानो, फिर देखो कि संसार है भी या नहीं है। अब देखो गुरु क्या कह रहा है। वो कहते हैं पहले अपने आप को जानो, फिर देखो कि संसार है भी या नहीं है। तो महाराज जी की वाणी भी कह रही है, सब जग रूप ब्रह्म का, भेद भ्रम ना कोई। सारा जग ये ब्रह्म का रूप है, यहां भेद भ्रम है ही नहीं, मुझको भेद और भ्रम ही नजर आ रहा है सारा सारा, मुझे ब्रह्म नजर नहीं आता। तो जब तक मेरा अहंकार कायम है कि मैं हूं तो मैं करने वाला हूं, मेरे अंदर इच्छाएं हैं, मेरे अनुसार चीजें चलनी चाहिए, यही आपका बंधन है। तो इसीलिए जब तक आप ये नहीं सीखते कि संसार दुख रूप है, तब इस संसार से मुक्त होने की कोशिश आप क्यों करोगे? जब तक आपको किसी भी चीज में मजा आ रहा है संसार में, आप ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश नहीं करोगे। ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश वही करेगा जिसने ये बात समझ ली कि संसार में जितना भी मेरा पास्ट रहा ना कभी चैन मिला, और जितना भी फ्यूचर है ना कभी चैन मिलेगा, मैंने संसार में क्या लेना। ऐसा व्यक्ति ही ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो अब बताइए फिर परमार्थ कर्म क्या हो सकता है? अब सोचो जरा परमार्थ कर्म क्या हो सकता है। इसका मतलब जो कर्म आपके कर्तापन को खत्म करे, जो कर्म आपके मन की इच्छाओं को खत्म करे, जो कर्म आपको ईश्वर की याद दिलाए, जो कर्म आपको ईश्वर के नजदीक ले जाए, वही परमार्थ कर्म है। वो सारा का सारा परमार्थ कर्म है। इसलिए सेवा कर्म भी स्वार्थ कर्म ही कहलाता है। ये सेवा कर्म भी परमार्थ कर्म तभी बन सकता है जब इसमें निष्कामता हो, जब इसके अंदर ईश्वर परायणता हो, ये परमार्थ कर्म तभी बन पाएगा। क्योंकि निष्कामता का मतलब क्या हुआ? निष्कामता का मतलब यह है कि मैंने इस कर्म के द्वारा किसी भी इच्छा की पूर्ति नहीं करनी है, और कर्म करते हुए मेरे अंदर निरंतर ये ध्यान बना रहे कि वास्तव में मैं ये कर नहीं रहा हूं, ये प्रभु ने इस प्रकार का प्रारब्ध मुझे दिया है कि इस देह से ये कर्म प्रभु करवा रहे हैं। तो उस कर्म का कर्ता आप ईश्वर को ही समझते हो करते वक्त भी, और कर्म करने के पश्चात आप फल की तरफ देखते हो। तो फल की तरफ भी आप नहीं देखते हो फिर, कि जैसा प्रभु ने फल निश्चित कर रखा है उसका फल प्रभु देंगे, आपका उससे कोई वास्ता नहीं होता, यूं कहिए उस फल में आपकी कोई आसक्ति नहीं होती, तब वो कर्म निष्काम हो पाता है। तो इसीलिए निष्काम कर्म हम आज की स्थिति में नहीं कर सकते, हम निष्काम कर्म करने की कोशिश करते हैं। आप सेवा करते हो, सेवा में सफलता मिल जाती है तो आपके मन में उमंग आती है, बड़ा अच्छा हो गया, खुशी होती है, नहीं होती है। तो ये खुशी का होना ये बंधन है, संसारी वस्तु से खुशी हो रही है आपके अंदर, तो ये तो बंधन हो गया, क्योंकि इस खुशी को भी मन बार बार लेना चाहेगा। और कर्म करने के पश्चात आपको विफलता मिल गई तो तब मन में दुख होगा, मेरी मेहनत बेकार चली गई, होगा नहीं होगा, तो मन में सुख और दुख हो रहा नहीं हो रहा है, तो निष्कामता कहाँ रही इसके अंदर। तो ये परमार्थ कर्म फिर भी इसको क्यों कहते हैं, सेवा कर्म को परमार्थ कर्म क्यों कहते हैं, क्योंकि हम निष्काम होने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं, हम सिमरन क्यों कर रहे हैं, ईश्वर प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, लेकिन सिमरन में फेल हो रहे हैं, सिमरन के साथ साथ संसार का सिमरन भी चल रहा है हमारा, उसकी इच्छाएं भी मन के अंदर पल रही हैं, वहां भी बार बार फेल हो रहे हैं, फिर भी सिमरन धीरे धीरे हमको ईश्वर के नजदीक ले जा रहा है। सिमरन में फेल होने के बाद भी वो परमार्थ कर्म ही है, क्योंकि वो हमको धीरे धीरे ईश्वर की तरफ ले जा रहा है। तो इसीलिए देखा जाए तो जो कि भी आपकी कोशिश है किसी भी रूप में, यदि वो कोशिश आपको ईश्वर के नजदीक ले जा रही है, वो सारा का सारा आपका परमार्थ कर्म है। जैसे मान लिया सत्संग ही सुन रहा हूं मैं, ये सत्संग सुनना भी तो एक कर्म है, सत्संग में जाना भी तो एक कर्म है, क्यों कर रहा हूं मैं, इसमें टाइम क्यों लगा रहा हूं मैं, इसीलिए ताकि ईश्वर का विज्ञान समझ में आए, मेरे अंदर जो है वो सत्कर्म करने की प्रेरणा पैदा हो और मैं उसको कर सकूं। तो सत्संग सुनना, सत्संग करना, ये दोनों ही परमार्थ कर्म हो गए, यदि इसके पीछे भाव आपका केवल एक ही है कि जल्दी से जल्दी मैं ईश्वर के नजदीक पहुंच जाऊं। इससे हटके यदि कहीं आपके अंदर ये भाव आ गया कि देखो मैंने कितने लोगों को सत्संग सुनाया, तब परमार्थ कर्म रहा ही नहीं, ये तो आपकी मैं को और पक्का कर रहा है, ये तो स्वार्थ कर्म हो गया, ये भाव आते ही ये स्वार्थ कर्म हो गया। क्योंकि जिस कर्म को आप कर रहे थे अहंकार को खत्म करने के लिए, उस कर्म ने आपके अहंकार को बढ़ा दिया, तो परमार्थ कर्म कहाँ रहा है। इसलिए ये आपके मन की बेचैनी को खत्म नहीं करेगा, बल्कि हो सकता है आपके मन की बेचैनी को और बढ़ा दे, आपके अहंकार को और बढ़ा दे। तो इसकी यदि परिभाषा की जाए तो एक परिभाषा तो महाराज जी ने की है, दो मार्ग प्रगट भय, एक भोगे निज सुख को, एक पर को सुख नित देत, निज सुख मोहित जो भय सो रोवत चले हैं मीत, पर सुख को जिन सेविया सो चले जगत को जीत। जगत को जीतने का क्या मतलब है, क्या कोई सारे संसार को जीत सकता है क्या? जगत मेरे मन का संकल्प है। महाराज कहते हैं प्रेमी देह और संसार ये एक साथ प्रकट होते हैं। जब रात को आप सोते हो सपना देखते हो तो स्वप्न में आपकी देह और देह के साथ बाहर का संसार एक साथ पैदा होते हैं या एक एक करके पैदा होते हैं? और स्वप्न के शरीर से सारा आप कारोबार करते हो, सारे काम करते हो, सारा भोग विलास करते हो, सुख दुख भोगते हो, लोग भी पैदा हो गए, आपकी देह भी पैदा हो गई और संसार भी पैदा हो गया, और सारी रचना इसी प्रकार चलती है जैसे इस जागृत हालत में चल रही है, कोई भेद होता है इसमें? लेकिन जब आप जागते हो तब ये संसार देखते हो। जागने में और स्वप्न में यदि अंतर है केवल ये है कि अब आप उस स्वप्न वाले संसार को झूठा कह रहे हो कि वो मन की कल्पना था, इसको सच्चा कह रहे हो, कह रहे ये मन की कल्पना नहीं है, ये वास्तव में। यही हमारी गहरी अज्ञानता है। इसलिए वाणी तो निर्णय दे रही है, सपना जैसे रात का ऐसे जगदा खेल, साफ साफ तो कह रही है वाणी। गुरु को भ्रम थोड़ी ना है कोई, भ्रम तो हमें है। कितना गहरा भ्रम है, विचार करो। वाणी निर्णय दे रही है कि सपना जैसे रात का ऐसे जगदा खेल, तो स्वप्न के संसार में इस जागृत संसार में लेश मात्र भी कोई भेद नहीं है। तो इसीलिए इस जागृत संसार में भी जब किसी भक्त का ध्यान ईश्वर में गहरा लग जाता है, जिसको समाधि कहते हैं, तो ये संसार गायब हो जाता है। समाधि का क्या मतलब है? कि मन का संकल्प जहां पर खत्म हो जा रहा, मन की वो हालत जहां मन कल्पना रहित है। जब मन कल्पना रहित है तो संसार भी गायब। तो समाधि से भी सिद्ध होता है कि संसार कल्पना रूप है। महर्षि रमण कह रहे हैं किसी की लंबी वर्षों तक समाधि भी लग जाए, 100 वर्ष की भी समाधि लग जाए, लेकिन जब समाधि टूटेगी तब वो संसार को ऐसे ही पाएगा। जैसा उसके प्रारब्ध में है संसार, वैसे ही संसार को सामने खड़ा पाएगा। वैसे तो जब तक मन का बीज नाश नहीं होता, समाधि के बाद भी जीव का कल्याण नहीं होता। इसलिए मन का बीज ही नाश सत्पुरुष को करना होता है। इसलिए जिसका मन का बीज नाश हो जाता है उसको फिर सहज समाधि कहते हैं। सहज समाधि का मतलब होता है कि हर समय वो अद्वैत रूप में स्थित है। यहां आके पता लगता है कि महर्षि रमण क्यों कह रहे हैं गुरु केवल एक है और वो परमेश्वर है। क्योंकि गुरु वो व्यक्ति नहीं है, हम उसको व्यक्ति करके देख रहे हैं, ये हमारी कमी है, क्योंकि हमारा मन खड़ा हुआ है ना, और गुरु के अंदर मन गायब है, उसके बीज नाश हो चुका, भस्म हो चुका, इसलिए वो अद्वैत में स्थित है। तो हम गुरु किसको बना रहे हैं? ईश्वर को गुरु बना रहे हैं, किसी मनुष्य को गुरु नहीं बना रहे। तो इसीलिए यदि किसी का गुरु है तो उसको सत्पुरुष कहा जाता है। सत्पुरुष कौन है? अद्वैत पुरुष। तो इंडिविजुअल नहीं है वो। इसीलिए केवल वही आपका कल्याण कर सकता है। उसी के लिए महाजी कह रहे हैं कि सतगुरु तो अंतर रमे पल पल करे पुकार, तू आज्ञाकारी होए के घटका पाट उगा। सतगुरु तेरे अंदर रम रहा है, अंदर ईश्वरी तो रम रहा है ना, वही सतगुरु है। हम ये बातें क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि हम उसको मनुष्य करके देखते हैं, व्यक्ति करके देखते हैं। ये मंगत राम जी हैं, एक महर्षि रमण थे, एक रामकुज परमहंस थे, एक राम थे, एक कृष्ण थे, इस करके देखते हैं, नाम रूप में उसको देखते हैं। जबकि इनकी बातें सुनो तो वो एक ही जैसी हैं, महाजी कह रहे हैं और श्री कृष्ण भी कह रहे हैं अर्जुन के सामने, अहम आत्मा गुडाकेश, हे अर्जुन मैं आत्मा हूँ, रत देशे अर्जुन तिष्ठति, हृदय में निवास करता हूँ। बात वही आ गई, सदगुरु तो अंतर में पल पल करे पुकार। सत्पुरुषों की बात यदि ध्यान से पढ़ो आप तो वो तो यही कह रहे हैं। तो संसारी तो गुरु के नाम पे भी लड़ पड़ते हैं आपस में, मेरा गुरु तेरा गुरु, उनको गुरु की पता ही नहीं कौन गुरु। तो इसीलिए कर्म जो है आपका परमार्थ कर्म तब बन सकता है जब वो परम अर्थ की तरफ ले जाए। परम अर्थ क्या है? ईश्वर, आत्मा, ब्रह्म। जो कर्म आपको ईश्वर की तरफ ले जाए वो परमार्थ कर्म है। जो कर्म आपके संसार के निश्चय को पक्का करे वो स्वार्थ कर्म है। इसलिए महाजी ने समता विलास में लिखा, देश भक्ति भी देह परायणता है, क्योंकि देश भक्ति मनुष्य के इस निश्चय को पक्का करती है कि संसार सत्य है। तभी तो देश को पकड़ के बैठ जाते हो आप, जान दे दूंगा देश नहीं जाने दूंगा। ऐसी मां कहती है, बेटे की रक्षा करूंगी जान दे दूंगी, अंतर क्या दोनों? तो देह का निश्चय बैठो ना, देह सत्य है। ईश्वर का निश्चय कहाँ है? दोनों चीजों में ईश्वर का निश्चय गायब, देशभक्ति में भी ईश्वर का निश्चय गायब है और संतान भक्ति में भी ईश्वर का निश्चय गायब है। तो इसीलिए यहां आके ये परमार्थ कर्म का मसला बड़ा गहरा हो जाता है। सतपुरुष जो कुछ भी बात लिखते हैं वो इस प्रकाश में लिखते हैं, इस बात को ध्यान में रखकर लिखते हैं। अब समता विलास में पढ़ के देख लीजिए आप, सेवा का चैप्टर, सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग, सत्सिमरण, इन पांचों को पढ़कर देखिए आप, साफ पता लग जाएगा कि सेवा करवाने के लिए सेवा का नियम महाराज ने लिखा है या ईश्वर प्राप्ति के लिए सेवा का चैप्टर लिखा है। आप पढ़कर देखो, इस एंगल से उस चैप्टर को पढ़कर देखो आप, कि महाराज जी ने ये चैप्टर सेवा करवाने के लिए आपसे लिखा है या ईश्वर प्राप्ति के लिए लिखा है। सेवा करना भी तो एक वासना ही है, और क्या है वो भी तो इच्छा ही है। मैंने 50 रोगियों का कष्ट दूर करना है, ये भी तो आपकी इच्छा ही है। इच्छाएं 3 प्रकार की होती है ना, तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी। ये आपकी सतोगुणी इच्छा कहलाएगी, तुलनात्मक दृष्टि से ये आपकी सतोगुणी इच्छा कहलाएगी। और दूसरों को दुख देके आराम हासिल करना, ये तमोगुणी इच्छा है। खूब कमाई करके खूब सुख हासिल करना, ये रजोगुणी इच्छा है। और कर्म के द्वारा किसी का दुख निवारण करने की कोशिश करना, ये सतोगुणी इच्छा है। हैं तो तीनों इच्छा है। और ईश्वर इन तीनों इच्छाओं से ऊपर है। वो निर्गुण है ईश्वर, निर्गुण है तो वहां वासना भी नहीं, जहां गुण है वहां वासना होगी, जो चीज निर्गुण है उसमें वासना भी नहीं होती। तो मैंने निर्वास होना है, इसका मतलब मैंने निर्गुण होना है, सतोगुण भी नहीं रहना। तो इसीलिए ईश्वर निराकार सत्ता है, आकार नहीं है उसका। जीव खुद भी निराकार सत्ता है, जीव का भी कोई रूप नहीं है। यदि इसका रूप होता तो इस देह की जब डेथ होती है इसको जलाते तो जीव जल जाना चाहिए था, फिर तो जीव तो नहीं जलता। जब जीव नहीं जलता इसका मतलब वो स्थूल चीज नहीं है जीव। और स्थूल देह के साथ साथ आपकी सूक्ष्म देह भी तो है, जिसको मन कहते हैं। मन सूक्ष्म शरीर है आपका, मन भी नहीं चलता। तो यही मन आपके ही नई देह को तैयार कर लेता है। जैसे स्वप्न में मन ही तो देह को तैयार करता है, सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर स्थूल संसार की रचना कर लेता नहीं कर लेता। लेकिन एक बार तैयार हो गई रचना, फंस जाते हो फिर आप उसमें, फिर आपके नहीं चलते। तो अपने बारे में ही मैं ठीक से सोचने की कोशिश नहीं करता। कितना सत्संग सुनता हूं, कितनी वाणी पढ़ता हूं, समता विलास पढ़ता हूं, हर जगह लिखी हुई ये बातें, हर जगह लिखी हुई फैली पड़ी हैं सारे शास्त्र में, कहीं मेरी बुद्धि में नहीं बैठती बात। ऊपर ऊपर की मोटी मोटी बातें मैं याद कर लेता हूँ, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को दुख देना नहीं चाहिए, कहते ना अच्छी अच्छी बातें मैं याद कर लेता हूँ। लेकिन शास्त्र जो आपको सिखाना चाह रहा है आपका बंधन खत्म करने के लिए, वो बात मेरी बुद्धि नहीं पकड़ती। तो इसीलिए मेरी समझ में ही नहीं आता सब कुछ पढ़ने लिखने के बाद भी कि परमार्थ कर्म क्या है और स्वार्थ कर्म क्या है, इसकी ठीक ठीक समझ नहीं आती। तो सीधी सी बात है कि स्वार्थ कर्म वो है जो आपके अहंकार को बनाए रखता है। मैं देह हूँ इस भाव को बनाए रखता है, मैं जीव हूँ इस भाव को बनाए रखता है, या यूँ कहें कि आपके कर्तापन को बनाए रखता है, या यूँ कहें कि आपके अहम भाव को बनाए रखता है। अहम भाव का मतलब होता है कि ईश्वर अलग है, मैं अलग हूँ, यह है अहम भाव। और जब ये अहम भाव खत्म होता है गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलकर, तब जीव को खुद अनुभव होता है इस बात का, उसका निज अनुभव होता है कि मैं और ईश्वर एक ही चीज है। मेरा अलग ईश्वर से हटके तो कोई अस्तित्व, किसी चीज का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ना किसी मनुष्य का अस्तित्व है, ना किसी जीव जंतु का अस्तित्व है, ना संसार का अस्तित्व है, किसी चीज का अस्तित्व ही नहीं है। अब यहां देखो बाइबल की बात समझ में आती है, इन द बिगिनिंग वाज वर्ड, कहते हैं प्रारंभ में केवल शब्द था। तो बाइबल क्या करिए, प्रारंभ में केवल शब्द था, शब्द का मतलब महाजनी कहते हैं शब्द रूप परमेश्वर, नाद रूप परमेश्वर, ओम जिसको कहते हैं, यही तो है वो। तो बाइबल के ईश्वर में वेद के ईश्वर में कोई अंतर है क्या? वेद उसको ओम कह रहे हैं, बाइबल उसको वर्ड कह रही है, बात एक ही। वर्ड वाज विद गॉड, जब ईश्वर का कंसेप्ट आया तो वहां भी डिफाइन कर दिया, ईश्वर के साथ क्या था, ईश्वर के पास क्या था, केवल शब्द था। क्योंकि यहां भी हम सोच सकते हैं कि एक ईश्वर था एक शब्द था, इसका मतलब ईश्वर के पास शब्द था ना। तो आगे क्लियर कर रही बाइबल, वर्ड वाज गॉड, शब्द ही ईश्वर था, भेद खत्म हो गया। अब सत्पुरुषों के अंतर होता है वो अद्वैत की ही बात करते हैं, हम उनके अर्थ में से भी द्वैत बना लेते हैं, ना समझने के कारण उसमें भी द्वैत खड़ा कर लेते हैं। इन द बिगिनिंग वाज वर्ड, प्रारंभ में इस सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, केवल शब्द था। इसका मतलब इस सृष्टि का ओरिजिन क्या है, शब्द ब्रह्म ही तो है, अद्वैत हुआ नहीं हुआ, वो जब कुछ था ही नहीं तो अद्वैत हो गया नहीं हो गया। अब अद्वैत में से विचार करो, अद्वैत में से क्या द्वैत पैदा हो सकता है? अद्वैत में से क्या द्वैत रचना हो सकती है? नहीं हो सकती, संभव ही नहीं। लेकिन क्योंकि हमको द्वैत दिखाई पड़ रहा है, मैं हूं आप हैं, ये दिखाई पड़ रहा है मुझे, मेरे अनुभव की बात है, तो इसलिए वो बात मेरी समझ में नहीं आती, क्योंकि मेरा जन्म ही द्वैत में हुआ है, जीवन ही मेरा द्वैत में कट रहा है, तो ये बात समझ में कैसे आए? तो इसीलिए शास्त्र की रचना जब होती है या सत्पुरुषों के वचन जब उच्चारित होते हैं तो वचन जब बोला जाएगा तो द्वैत में ही तो बोला जाएगा ना, उसमें द्वैत होगा। तो इसलिए बाइबल कह रही है इन द बिगिनिंग वाज वर्ड, प्रारंभ में केवल शब्द था, वर्ड वाज विद गॉड। जब संसार की रचना हुई तो ईश्वर भी है फिर रचने वाला, लेकिन उस ईश्वर के पास था क्या? केवल शब्द था, अर्थात यदि संसार की रचना हुई तो केवल शब्द से ही रचना हुई। ये रचना ऐसे ही हो गई जैसे कि पानी से बर्फ बन जाए हजार टुकड़े, तो हजार तरह के बनेंगे, हजार शक्लें होंगी, लेकिन फिर भी विचार करो क्या पानी बदल गया? पानी में कोई भेद पैदा हुआ क्या? कोई पैदा नहीं हुआ। तो ईश्वर यदि बना भी, ईश्वर प्रकट भी हुआ, तो ईश्वर के पास था क्या? केवल शब्द था, वर्ड वाज विद गॉड। और फिर वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मन में आपके ये आ गया हो कहीं ईश्वर कोई अलग चीज हो गई, तो कह रहे हैं वर्ड वाज गॉड, शब्द ही ईश्वर था। तो इसका मतलब जो महर्षि रमण कह रहे हैं कि आत्मा ही गुरु है, बात ठीक ये है नहीं है, बात शब्द ही गुरु है ये बात हुई नहीं। इसलिए महाजी ने लिखा समता विलास में, देखो ना कि ऋषियों की बातें समझना चाहिए। महाजी ने गुरुपद सिद्धांत में सबसे पहला वचन ही ये लिखा, गुरु वास्तव में शब्द रूप परमेश्वर है। अब देखिए महाजी का वर्ड वही बाइबल से मैच कर रहा है, वास्तव में गुरु शब्द रूप परमेश्वर है, जो घट घट व्यापक है, सबके अंदर वो रमा हुआ है। तो अब गुरु को कहां खोजोगे? उस गुरु की प्राप्ति कहां होगी? घट में ही तो होगी। ये जो घट है, इस घट के अंदर ही तो गुरु की प्राप्ति होगी आपको। पहला बोध आपको आपका गुरु को गुरु के स्वरूप का अंदर ही होगा। वो स्वरूप वो नहीं है जो इन आंखों से दिखता है, इंद्रियों के अनुभव की चीज नहीं है वो गुरु का स्वरूप। तो महाजी कह रहे हैं कि उसका अनुभव कौन करता है? जीव की जो चेतना है वो उसका अनुभव करती है। जैसे मेरी जो चेतना है, या यूं कह लूं मैं हूं, मैं अपने मन का अनुभव करता हूं? नहीं करता हूं। कहां करता हूं मन का अनुभव? अंदर करता हूं। जब शांत बैठ जाऊं, इस देह का व्यापार मेरा बंद हो जाए, अंदर जब मैं ईश्वर का ध्यान करने की कोशिश करता हूं, उस समय मन के संकल्प का दर्शन करता हूं। देखो मेरे मन में ये संकल्प आया, मेरे मन में ये संकल्प आया, तो इस संकल्प का अनुभव मैं कर रहा हूं ना, तो मैं उस समय कौन हूं? मैं चेतना हूं, मेरे अंदर चेतना है ना, होश है मेरे अंदर। तो जो चीज होश में है वो मन के संकल्प का अनुभव कर रही है। जिस प्रकार मन है जड़, संकल्प तो जड़ है ना, जिस प्रकार ये चेतना मन के संकल्प का अनुभव कर रही है, उसी प्रकार सिमरन के वक्त ये जीव उस चेतना का भी अनुभव करता है जो ईश्वर आनंद के रूप में अंदर प्रकट होती है। तो ये अनुभव कीजिए। तो जब भी आपको ईश्वर का अनुभव होगा, ईश्वर की प्रेजेंस का अनुभव होगा, ईश्वर की चेतना का अनुभव होगा, वो अंदर ही होगा। उसके बाद ये स्थिति आती है कि ये देह का अनुभव भी जीव को बंद हो जाता है। तो जब देह का अनुभव बंद हुआ तो अंदर क्या रहा, बाहर क्या रहा, उससे मतलब सारा जगत रूप जितना भी है ये ब्रह्म रूप हो जाता है। सब जग रूप ब्रह्म का भेद भ्रम न कोई। ये तो समाधि हालत का व्यक्ति इस बात को अनुभव करता है। तो जो कुछ भी शास्त्र में लिखा है वो सारी अनुभव की बात है, वो सब सत्य बात है। देखिए, हम जहाँ खड़े हुए हैं हम तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपसे कहा जाता है कि गुरु की बात जहाँ तक आप अमल में ला सकते हो वहाँ तक करने की कोशिश तो करो। शुरू में तो सरल सरल बातें महाराज जी कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, प्रेमी यदि कोई पाप कर रहे हो जिसका तुमको पता है मैं गलती कर रहा हूँ, बेईमानी कर रहे हो पता है मैं बेईमानी कर रहा हूँ, चालाकी कर रहे हो तो पता है मैं चालाकी कर रहा हूँ, मेरे क्रोध के कारण किसी को दुख पहुंच रहा है मुझे पता है मेरे क्रोध के कारण इसको दुख पहुंच रहा है, तो कह रहे हैं प्रेमी या जब गलती कर रहे हो उसको पहले त्यागने की कोशिश करो, वो तो दिखाई पड़ रही है तुमको। इस प्रकार अपना जो है जीवन शुद्ध तो करो, इसके बाद परोपकार की बात शुरू होती है। पहले पाप तो बंद करो, परोपकार क्या करोगे, पाप भी कर रहे हो परोपकार भी कर रहे हो, ये कैसे हो जाएगा। पाप तो बंद करो पहले। तो जीवन की जब सफाई हो जाती है फिर आपसे कहा जाता है कि ये पांच नियम का जो पालन है ना, इन पांच नियमों का इसको बारीकी से सीख कर इसको अपनाने की कोशिश करो। तब धीरे 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 आपका मन जो है वो स्वार्थ कर्मों से धीरे धीरे ये छुटकारा पाएगा। पहले कष्ट देकर दूसरे से सेवा लेते थे, कष्ट देकर दूसरे से सेवा लेते थे, अब इतनी चेंज आ जाएगी किसी का कष्ट दूर करने की कोशिश करोगे आप, चेंज आ गई नहीं। तो बुद्धि में विवेक तो तब आएगा ना, पहले उसकी पात्रता तो आपके अंदर बने, पापी के अंदर विवेक कहां से आ जाएगा। तो जीवन जब आपका शुद्ध हो जाता है, सादा हो जाता है, फैशन परिस्थिति से मुक्ति पाता है मन आपका, बनावटी जीवन से मुक्ति पाता है, दिखावे से मुक्ति पाता है, होश में आ जाती है बुद्धि कि मैंने संसार के बंधन से मुक्त होने के लिए जीना है, ईश्वर प्राप्ति के लिए जीना है, ये धारणा आपके मन में घर कर जाती है। उस हालत में जब ये पांच नियम का पालन करते हो तो आपको खुद ही समझ आ जाती है कि परमार्थ कर्म क्या है और स्वार्थ कर्म क्या है। तो इसीलिए जब तक आपके अंदर ये लक्ष्य नहीं बनता मन के अंदर कि मैंने ईश्वर प्राप्ति करनी है, तब तक आपको ठीक प्रकार से समझ भी इस बात की नहीं आ सकती कि परमार्थ कर्म क्या है। तो सिंपल तरीके से तो एक ही बात कही जा सकती है इसके बारे में कि जो कर्म आपको ईश्वर के नज़दीक ले जाए और संसार की वासना से मुक्त करे, वो सारे कर्म परमार्थ कर्म, बाकी सब स्वार्थ कर्म। ओम ब्रह्म सत्य।